अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जो माली मसाइल हैं اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے ہیں اور جن کا تعلق ہماری دولت سے ہے، ہمارے مال سے ہے، ہمارے خرچ کرنے سے ہے، ہمارے کمانے سے ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اب یہ جو آخری چند رکوع ہیں اس میں موجود ہیں، اور پھر ان رکوع کے اندر بھی تقسیم ہے، کچھ کام کرنے کے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں جن سے بچنے کا حکم یہاں پہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مالی مسائل کو لے لیں تو بنیادی طور پہ مالی مسائل کے جو احکام سورہ بقرہ کے آخر میں بیان ہوئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ معاشرے کے اندر غربت اور فقر اور فاقہ اور مفلسی یہ ایک مشکل ہے، ایک بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے۔ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ پہلے سے ہی امیر ہیں، مالدار ہیں، اور وہ اپنے مال کو دو چند بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو قرضہ دے کے قرضوں میں پھنساتے ہیں، سود کے جال میں پھنساتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رکوع کے بعد جو رکوع نازل ہوا ہے وہ سود کی حرمت پر، تو کتنے زبردست طریقے سے ہمارے دین اور ہماری دینی کتاب ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، پوری کی پوری جو ہماری معیشت اور پوری کی پوری جو ہماری مالی نظام ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، آج اور رہا ہے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ہی اجازت نہیں دے دی کہ جہاں سے جو مل رہا ہو، جیسے مل رہا ہو، بس جیب میں بھرتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ حلال ہونا ضروری ہے، جو کمایا جا رہا ہے اس کے اندر پاک ہونا، صاف ہونا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ تمام وہ صورتیں جس صورت میں ایک مالدار بغیر کسی وجہ کے صرف اور صرف اپنے مال کے بل بوتے پر مزید مالدار ہوتا ہے یا مزید اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ تمام وہ صورتیں اسلام کے اندر جائز نہیں۔ یا تو آپ رزق لیں گے، یا تو آپ محنت کریں گے، یا آپ کوئی خدمت کریں گے، کوئی سروس دیں گے، یا آپ کوئی چیز خریدیں گے اور بیچیں گے، یہ وہ صورتیں ہیں جو اسلام کے اندر جائز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نقصان بھی میں نہ اٹھاؤں اور میری طرف سے کوئی رزق بھی نہ ہو اور میری طرف سے کوئی محنت بھی نہ ہو، میری طرف سے کوئی خدمت بھی نہ ہو اور جو فائدہ ہو وہ میرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اسلام میں جائز نہیں کی۔ تو وہ تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے کہ جب تک معاشرے کے اندر بھوک موجود ہوگی اس وقت تک معاشرے کے اندر امن نہیں، اور جب تک معاشرے کے اندر فقر اور فاقہ موجود ہے اس وقت تک معاشرے کے اندر 100% اصلاح मुमकिन नहीं है। इसलिए आने की फिक्र तो बाद में है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पहले फरमा दिया कि तुम्हारे पास जो अमवाल मौजूद हैं और तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन माल को फ़ुकरा और मसाकीन को देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये ज़रूरी है। आप तारीफ़ उठा कर देख लीजिए, खुलफ़ाए राशिदीन और आइम्मा एज़ाम के दौर में जब मुसलमानों के मामें बाकायदा ज़कात और सदक़ात और खैरात के वसूल और तकसीम का निज़ाम मौजूद था, उस ज़माने में इस्लामी हुकूमतों में अमन कैसा होता था, इस्लामी हुकूमतों में खुशहाली किस तरीके की होती थी, लोगों की इज्जत और आबरू महफूज होती थी, लोगों की जान माल की हिफाजत इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी होती थी। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम के कवानीन इतने मुतदिल और इतने भरपूर हैं कि एक मुसलमान एक ज़िम्मी को जो काफिर है, जो ईसाई है, जो यहूदी है, अगर ज़ुल्मन कत्ल कर देता है तो उलमा ने फतवा दिया है कि मुसलमान का कत्ल ज़रूरी है, क़िसास होगा। और क़िसास का निज़ाम, जज़ा और सज़ा का निज़ाम यही बुनियाद है तरक्की की। जिस सरजमीन पे आप सोने के मोहल्लात बना दें, चांदी की दीवारें बना दें, हीरे जवाहरात के मीनारे और गुंबद बना दें, लेकिन वहाँ पे इंसाफ ना हो और वहाँ पे जज़ा और सज़ा का निज़ाम ना हो, तो उस शहर को वीरान होने में चंद दिन लगते हैं, चंद दिन भी नहीं, चंद में वीरान। और जिस जगह पे दुनिया के असबाब की चीज़ें बज़ाहिर मौजूद ना हो लेकिन इंसाफ कायम हो, जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम हो, उस जगह की तरक्की, उस जगह का अमन, उस जगह की खुशहाली का आगे बढ़ना वो यकीन। ये जो सारी की सारी सूरत है, अल्लाह ताला ने इसका बेहतरीन हल हमें समझा दिया है कि मुसलमानों, जब तुम अपने माल से ज़ायद माल के मालिक बनते हो तो इस माल को और इस दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से फिर ये नहीं कि नुकसान है, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कितना है अभी आए कि आप देख लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मज़हबुल लज़ीन युन्फ़िकूना, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर। उलमा ने इसकी तफसीर की है और इसकी तफसीर में बहुत सारे मसारे मौजूद हैं, मसलन जिहाद है, मसलन हज है, मसलन तबलीग है, मसलन तालीम है, मसलन कुरान करीम की खिदमत है, मसलन अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, मेहनत करने वाले, दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, ये सब अल्लाह के रास्ते में खर्च होता है। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने अमवाल खर्च करते हैं, कमसल हब्बत, उसकी मिसाल ऐसे दाने की है, अम्बत जो उगा चुकी है, सबा बिना सात किस्म के खुश हैं, एक दाना किसान उगाता है तो उस दाने में से सात टहनियाँ निकलती हैं या सात पौधे निकलते हैं, फी कुल सोम बोला थे उनमें आतू, और हर खोशे में, हर टहनी में 100 दाने मौजूद हैं। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं इससे भी बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, और अल्लाह ताला के ख़जाने बहुत वसी हैं, बड़े। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो खर्च करने के लिए कलिमात इस्तेमाल किए हैं वो मुतअद्दिद हैं। मसलन इन्फाक है, मसलन तआम है, मसलन सदका है, मसलन ज़कात। यहाँ पे उलमा ने ये वजाहत की है कि ज़कात वो फरीज़ा है, हर मुसलमान साहिब निसाब जब उस पर एक साल गुज़र जाए और वो निसाब का मालिक हो तो उसमें से ज़कात देना ये उसके लिए फ़र्ज़ है। जबकि इक़ाम, इन्फाक और खैरात ये आम है, इसके अंदर सदका भी है, इसके अंदर खैरात भी है, इसके अंदर हदिया भी है, इसके अंदर एहसान भी है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये वजाहत जो अक्सर मुसलमान जानते हैं कि कुरान करीम में ज़कात के लिए बाकायदा ईता ज़कात का लफ्ज़ आता है, जबकि खैरात और सदक़े और अल्लाह के दीन पे खर्च करने के लिए जो अल्फाज आते हैं वो इत्आम है, इन्फाक है और खैरात है। और ये आम है, आम का मतलब ये है कि ज़कात के अंदर खैरात शामिल हो ये ज़रूरी नहीं है, वो ख़ास है। और इत्आम के अंदर, इन्फाक के अंदर और खैरात के अंदर ज़कात शामिल ना हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए ख़ास और आम की नस्बत है। आम का इतलाक ख़ास पे पूरा पूरा होता है और ख़ास का इतलाक आम पर होना ज़रूरी नहीं। और इसी तरह कुरान करीम मिसाल दे रहा है, वो मिसाल ये दे रहा है कि देखिए जब आप अल्लाह के रास्ते में एक रुपया खर्च करते हैं, एक पैसा खर्च करते हैं, तो ये इसकी मिसाल आप समझ लीजिए कि उस दाने को आप ज़मीन में बोते हैं और वो जो दाना ज़मीन में बोया जाता है वो अल्लाह के हुक्म से निकलता है और उस एक दाने में से सात खोशे निकलते हैं और हर खोशे में 100 दाने मौजूद हैं। तो पता चला कि अल्लाह के रास्ते में जो आप खर्च करते हैं वो 700 गुना होकर आपको अल्लाह ताला उसके बदले अजर देते हैं, इनामात देते हैं, नेमतें देते हैं, दराजात देते हैं। ये बात समझ गए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है और उस रिवायत में भी यही बात है कि जो अल्लाह के रास्ते में सिद्क़ क़ल्ब से और अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है अल्लाह वहदहू ला शरीक उसे 700 गुना बदला करके देते हैं। और 10 गुना की तो आयत भी मौजूद है। तो उलमा कहते हैं कि कोई भी नेकी जो इंदल्लाह मकबूल होती है, अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, उस नेकी का बदला 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की रहमतों के मुताबिक वो मिलता है। और वो रिवायत जो हमारे तबलीग वाले बुजुर्ग बयान फरमाते हैं, 49 करोड़ वाली रिवायत, वो रिवायत रूहुल मानी अल्लामा आलूसी बगदादी ने जो तफसीर लिखी है उसमें मौजूद है, लेकिन उस रिवायत के सनद में मजबूती नहीं है, सेहत नहीं है। इसलिए हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आवाम को तरगीब देने के लिए तबलीग वाले भाई जो बयान करते हैं वो ठीक है, جو مستند علماء ہیں، محقق علماء ہیں، وہ والی روایتیں بیان نہ کریں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ کچھ روایات فضائل کے درجے میں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب ان روایات کے اوپر آپ اس کی تنقید کرتے ہیں یا آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو پھر اس کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو یہ باتیں وضاحت کے ساتھ ہو گئیں کہ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ نفلی ہیں اور کچھ فرض ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے کو ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو، تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ترغیب دلانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات پہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، جس طرح روزہ ایک فریضہ ہے، سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے، جس طرح حج ایک فریضہ ہے، جس طرح جہاد ایک فریضہ ہے، جس طرح تبلیغ ایک فریضہ ہے، بالکل اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء چندے مانگتے ہیں اور مساجد اور مدارس والے چندے مانگتے ہیں، اور یہ بات ان کو غلط لگتی ہے۔ سورہ منافقون اٹھا کے دیکھیے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، سب سے پہلے یہ بات منافقین نے کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کو پیسے دینا بند کر دو اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا بند کر دو، یہ منافقین کہتے تھے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ اپنے جیب میں آپ دبا کے رکھیں، اور آپ کے ساتھی بھوک سے مر رہے ہوں، آپ کے پڑوسی بھوک سے مر رہے ہوں، آپ کا محلہ، آپ کا شہر بھوک سے حالت اس کی بری ہو چکی ہو، اور آپ کہیں کہ نہیں، ساری کی ساری جو دولت ہے وہ میری۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ قارون کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس نے کہا کیوں کرو، اور وہ کہتا تھا جو کچھ میرا ہے یہ میرا ہے اور میں نے محنت کی ہے اور اس کو کمایا ہے، آپ کو میں کیوں دوں؟ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں، انسانیت احسان چاہتی ہے، انسانیت بھلائی چاہتی ہے، انسانیت کسی کے ساتھ مدد کرنا چاہتی ہے۔ اور کتنا زیادہ انسان کو راحت ہوتی ہے جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے، جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کے بعد جو دل میں تسلی ہوتی ہے اور دل کی تسکین ہوتی ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی مزے میں اور دنیا کے کسی بھی چیز میں وہ لطف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنے پر جو توفیق دی ہے، جو انوارات دیے ہیں، جو اجر دیا ہے۔ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا ہی میں جو اس کے برکات ہیں اور جو اس کی شفا ہے وہ آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ چندہ مانگنا بری بات ہے، چندہ مانگنا بری بات نہیں، چندہ مانگنا انسانیت کی ترغیب ہے اور چندہ مانگنا مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی فرما دیا تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، حضرت آپ ان سے صدقے لیا کریں اور آپ ان سے خیرات قبول کر لیا کریں، اور اس کے بدلے میں ان کو دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اور یقیناً جو آپ کی دعا ہے وہ ان کے لیے سکون ہے، وہ ان کے لیے برکت ہے، وہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو آج بھی ہمارے دین کا یہ فلسفہ موجود ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں वो मुश्किल में हैं, उनकी मदद कीजिए। आपके जो जानने वाले हैं, अजीज़ और अकारिब हैं, उनकी मदद करने में दोहरा अजर है। क्यों है? इसलिए कि एक तो वो इंसान है और इंसान की मदद करना ये इबादत है, और दूसरा ये कि वो आपके अजीज़ हैं, आपके जानने वाले हैं, लिहाजा आप जब उनकी मदद करते हैं तो आप दो हक अदा करते हैं, एक रिश्तेदारी का हक अदा करते हैं और दूसरा ये कि आप मुसलमानी का हक भी अदा करते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ एक फैशन है, वो ये कि जिस शख्स को लोग ज़्यादा चंदा दे देते हैं या जिस शख्स की जो एनजीओ है वो ज़्यादा तरक्की कर लेती है, बहुत बड़े बड़े फ्रॉडी वो बन जाते हैं, तो सबसे पहले उनके जहन में एक शैतानी बात आती है कि वो कहते हैं कि हमारा मज़हब वो इंसानियत है, इस्लाम से वो मुनकर हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि जो इंसानियत है वो हमारा मज़हब है। ये किसने ये मुतालबा किया है? आपको जो लोग चंदा दे रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं, आपको लोग ज़कात दे रहे हैं, आपको लोग खैरात दे रहे हैं, आपको लोग सदक़ात दे रहे हैं, आपको लोग नुज़ूर व कफ़ारात दे रहे हैं, और आप इस्लाम के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, इस्लाम की वजह से आपकी एम्बुलेंसें चल रही हैं, और फिर इतना बड़ा धोखा कि जैसे ही वो पैसे आपके जेब में आते हैं आप कहते हैं कि मैं तो इस्लाम को जानता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ काफिर को खुश करने के लिए, और वो माल जो किसी तरह से मुसलमानों के हाथ में नहीं है, कुफार के हाथ में है, मुनाफिकीन के हाथ में है, यहूद के हाथ में है, कहीं वो दौलत हमसे मिस न हो जाए, कहीं वो दौलत हमसे रह न जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनके जहन में ये खन्नास आता है कि ये कहते हैं कि हमारा मज़हब इंसानियत। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान का एहतराम नहीं है, इंसान का एहतराम मौजूद है, हमारे दीन इस्लाम के अंदर काफिर का झूठा जायज़ है, हिंदू मुसलमान का झूठा नहीं पीता, यहूदी मुसलमान का झूठा नहीं पीता, लेकिन हमारी किताबों में ये बात मौजूद है कि अगर इंसान है तो उसका झूठा पाक है, और दूसरे मज़ाहिब इंसान की बेहुरमती की तालीम देते हैं, हमारा दीन इंसान की बेहुरमती की तालीम नहीं देता, काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो ज़िंदा है तो उसको सही हाल में रखना ये इस्लामी रियासत के लिए ज़िम्मेदारी है, और अगर वो मर चुका है तो उसको इंसानियत वाले तरीक़े से तदफीन कर देना ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है, हल यस्तविल लज़ीन यालमून वल लज़ीन ला यालमून, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो जानता है और जो नहीं जानता है वो बराबर नहीं है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, जो देखता है और जो अंधा है वो दोनों बराबर नहीं है, वलल ज़ुलुमातु वलन नूर, और जो रोशनी है और जो अंधेरा है वो दोनों बराबर नहीं है, वलल ज़िल्लु वलल हरूर, और जो धूप है और जो छांव है उन दोनों की जो हालत है वो बराबर नहीं है। आगे फरमाया कि वला यस्तविल अहया वलल अमवात, जो जिंदा है और जो मुर्दा है वो दोनों बराबर नहीं है। तो मुसलमान की जो मिसाल है वो देखने वाले की है, और जो मुसलमान की मिसाल है वो जिंदा है, और जो मुसलमान की मिसाल है वो छांव में है, और जो काफिर है वो अंधा है, और काफिर मरा हुआ है, उसके दिल में अल्लाह की मारिफत नहीं है, और काफिर उसकी मिसाल उस धूप की है जो तप रही है और जो जल रही है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आप सब जहाँ जहाँ ये बात सुन रहे हैं, अपने सदाकात को और अपने खैरात को और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को अपनी आदत बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वादा किया है कि मैं 700 गुना करके दूंगा। अगर इस आयत पे यकीन नहीं है तो फिर ईमान नहीं है, और अगर आयत पर यकीन है तो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये मुसलमानों का फरीज़ा है। इससे फ़ायदे क्या होंगे? आपको 700 गुना अजर मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? माशरे के अंदर जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होंगी, खुशहाली बढ़ेगी, बदअमनी ख़त्म होगी, आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और मुसलमान भाई आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह के दीन आगे बढ़ेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा, और दुनिया की नेमतें तो है ही हैं, आखिरत की नेमतें वो भी बहुत बड़ी। असल नेमतें वो 60 साल 70 साल हम यहाँ रहेंगे, आखिर मरना है। मरने के बाद जो नेमतें हैं जो न ख़त्म होने वाली हैं, और जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल व करम हमें मतलूब है, जहाँ बाप बेटे को बचाएगा नहीं, जहाँ माँ बेटी को बचाएगी नहीं, जहाँ शौहर बेगम को बचा सकता नहीं है, उस मैदान में, उस जगह में अल्लाह वहदहु ला शरीक की रहमत, अल्लाह का करम और अल्लाह की मग़फ़िरत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, जिस तरह हमारे दीन की दूसरी तालीमात नहायत अहम भी हैं और ज़रूरी भी हैं, इसी तरह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह अहम भी है और ज़रूरी भी। अब यहाँ से तफसीरी जो नुक्ते हैं कुछ वो देख लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो एक पैसा खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, गोया कि वो एक दाना बोता है, और वो दाना जो ज़मीन में बोया जा रहा है उसके बदले में 7 खोशे निकलते हैं, और हर खोशे में 100 दाने मौजूद हैं। ये सारी बात ठीक है, लेकिन दाने का ठीक होना ज़रूरी है। अगर दाना ख़राब है, या दाने की नस्ल गलत है, या दाने में उगने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, तो फिर दाना नहीं निकलेगा। तो वो माल जो आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हो, उसका पाक होना और हलाल होना और सही रास्तों से हासिल होना, जैसे कि किसान का दाना सही होना ज़रूरी है, ऐसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सही होना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात कि दाना तो ठीक है लेकिन ज़मीन ख़राब है, ज़मीन के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो पौधा निकालती हो, या ज़मीन के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी ख़राबी है जिस वजह से वहाँ पे फसल का होना मुमकिन नहीं है, तो फिर ना फसल निकलेगी और ना दाने होंगे। तो इसी तरह आप जहाँ पर ख़र्च कर रहे हैं, जहाँ आप अपने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, उसका भी ठीक होना ज़रूरी है। वो कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं जानते, वो कहते हो कि हमारे नज़दीक एक अल्लाह की इबादत करने वाला और सैकड़ों बुतों के सामने झुकने वाला बराबर है। आप अपने माल और आपने अपने खैरात वहाँ दे रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी खैरात ठीक होगी, अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। हरगिज़ नहीं। दाने का भी ठीक होना ज़रूरी है और ज़मीन का भी ठीक होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ में भी कमी है, तो 700 गुना के जो अजर है, जो बदला है, उसका उसूल मुमकिन नहीं। अगर दाना भी ठीक है और ज़मीन भी ठीक है, लेकिन जो किसान वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कामचोर है, या उनको आता ही नहीं है, या उनको तजुर्बा नहीं है, या उनको तरीक़ा मालूम नहीं है, तो आप ख़ुद बताइए कि दाना ठीक से निकलेगा ही नहीं, और अगर दाना निकला भी तो उससे जो मतलूबा फ़वाद हमें हासिल करने थे वो हासिल नहीं है, क्योंकि किसान नाअहल है, किसान के तजुर्बे में कमी है, उसकी मेहनत में कमी है। तो किसान कौन है? वो हम हैं। जो दाना उगा रहा है, जो दाना बो रहा है, उसकी नीयत का ठीक होना भी ज़रूरी है। वो रुया के लिए ना हो, दिखलावे के लिए ना हो, लोग मेरी वाह वाह करें या मस्जिद मदरसे वाले हमारी खुशामदी करें इसके लिए ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो और अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, तो फिर ये नियत दुरुस्त है। जब दाना भी ठीक है, नियत भी ठीक है, ज़मीन भी ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम वो मतलूब है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम देंगे। और कुरान करीम ने एक मिसाल दी है कि ए ईमान वालों, जब तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो तो उसके बाद फिर दो शर्तें हैं। नंबर एक, एहसान जतलाना छोड़ दो। हमारे यहाँ क्या होता है कि दीनी मदारिस, मसाजिद, इन्फाक फी सबीलिल्लाह तो छोड़िए, लोग अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं फिर उनके ऊपर बैठे रहते हैं कि जी मैंने आपकी मदद की थी फलां जगह, मैंने आपके पास कुछ नहीं था, मैंने आपको दिया था, ये किया था, वो किया था। ये सब एहसान जतलाना है। और अल्लाह ताला इसी आयात में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें और फिर उस पर एहसान जतलाते हो, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं है। और दूसरी बात कि जो लोग ख़र्च करते हैं वो फिर तकलीफ़ देते हैं, ईज़ा देते हैं, बेइज्जती करते हैं, जलील करते हैं, बातें सुनाते हैं, ताने देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो उसके बाद ईज़ा देने की कोशिश न करना, तकलीफ़ न देना, जलील न करना, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हमलावर न होना, उसको ताने न देना। अगर ये सारी चीज़ें कर लीं तो जो आपने ख़र्च किया है वो दिखलावे के लिए है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं। कैसी प्यारी आयात है और कितने ज़बरदस्त इसमें कवायद बयान किए गए हैं कि खुदा की कसम, अगर आज हमारे माशी निज़ाम को इन कायदों के ऊपर जारी कर दें कि जो हमारी आमदन हो रही है वो पाक हो, वो ठीक हो, जो हमारा ख़र्च हो रहा है वो पाक हो, वो ठीक हो, वो जिस ज़मीन पे ख़र्च हो रहा है वो ज़मीन ठीक हो, जो ख़र्च कर रहा है उस किसान की नीयत ठीक हो, तो फिर इस मईशत का न चलना ये समझ से बाहर। लेकिन अफसोस ये है कि हम बातें तो ये करते हैं लेकिन जब मैदान अमल में निकलते हैं तो फिर IMF के पाँव पड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के पाँव पड़ते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पाँव पड़ते हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो वरना हम मर रहे हैं। ये बात गलत है। अपने पैरों पे खड़ा होना ये ईमान के तकाज़ों में से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे, मक्का में काबा मौजूद था, मक्का में सफ़ा मरवा मौजूद थे, मक्का में मैदान अरफात और गारे हिरा मौजूद था, लेकिन अपने पाँव पर दीन को खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। क्या किया था काफिरों ने? वादी शाम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद किया और आपसे मुआशी बाइकॉट किया, उन्होंने भी मईशत बंद की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत आप यहाँ से जाइए, और मदीना मुनव्वरा में जब आप पहुँचे तो इस्लाम अपने पाँव पे खड़ा हुआ, सहाबा अपने पाँव पे खड़े हुए, सेल्फ सस्टेन हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो उनको मकाम दिया, जो इज्जत दी, वो दुनिया उसकी गवाह है। तो कब तक हम मांगते रहेंगे, कब तक हम लोगों की मिन्नतें करते रहेंगे? काश के हमारे हुक्मरानों में गैरत होती, काश के हमारे हुक्मरान और कायदीन में ये हौसला होता कि वो हमारी कौम को अपने पाँव पे खड़े होने की तरगीब देते। आप सोचिए ज़रा, मैं तो हैरान होता हूँ, खबर आ जाती है कि जी फलां जगह से इतने डॉलर मिलने वाले हैं, वाह ये कोई हमने कमाए, ख़त्म हो जाएंगे। और किसी से कमा, किसी से मांग के ले लेना और उस पर खुश होना, ये तो बेवकूफ़ी। आप क्या कर रहे हैं? हमारे 25 करोड़ आबादी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये हमारे दीनी अहकाम और मसाइल का ज़रूरी हिस्सा है। अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, अपनी आल और औलाद کو ترغیب دیجئے. من اراد الدنیا فلیتجر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے وہ تجارت کرے. تجارت بابرکت بھی ہے, تجارت انبیاء کی سنت بھی ہے, تجارت کی پھر ہزاروں صورتیں ہیں, ہزاروں طریقے ہیں. ہمارے یہاں بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں, صبح 8 بجے ہم ٹائی باندھ کے پہنچیں گے, شام 6 بجے تک وہ ٹائی گلے میں پھنسی ہوئی ہے, یہ بھی پھنسا ہوا ہے, اور جی اوپر سے جو آرڈر ہے وہ کرنا ہے. تو یہ انجام آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو انجام آج ہمارا ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت بڑی محنت ہوئی ہے. ہماری سوچ ایسی چھوٹی کر دی گئی ہے اور ہمارا فکر کو ایسے محدود کر دیا گیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا تو سوچنا ہی نہیں. بہت بڑا تیر مار لیتے ہیں تو کیا جاب حاصل کر لیتے ہیں. جاب کیا ہے, وہ ساری زندگی آپ ان کے نوکر ہیں, آخر کار آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بوڑھے ہو گئے گھر جائیں. تو بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی بات ہے, لیکن آج کل ہمیں اس قسم کی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ مسلمان جو دنیا میں مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً وہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اور جو غریب ہیں فقراء ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اور تاکہ یہ سب مل کر, علماء سے یہ امید نہ رکھیے گا, اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری تجارت نہیں ہے, علماء کی ذمہ داری آپ کی معیشت کو آگے بڑھانا نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی دنیا چاند میں پہنچ چکی ہے, آپ لوگ ابھی تک وہی پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے, اور آج کل بھی یہ تانے دے رہے ہیں لوگ کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں روکا ہوا ہے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے, مولوی صاحب کی ذمہ داری تو دین تھا, وہ اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ وہ دین 100% محفوظ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی تھی, وہ ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے نبھائی ہے. آپ کی ذمہ داری تھی معیشت, آپ کی ذمہ داری تھی ترقی, آپ کی ذمہ داری تھی امن, اور آپ کی ذمہ داری تھی اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی, وہ آپ سے نہیں ہوا. مجرم علماء ہیں, قصور مولویوں کا ہے, کیوں بولے؟ آپ نے کسی اسپیس ایجنسی میں علماء رکھے ہیں؟ آپ نے کسی ہی اپنی کسی کے خاص ادارے میں علماء رکھے ہیں؟ علماء کو کوئی راکٹ آپ نے بنا کے دیا ہے؟ ہم کیوں جائیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے, اور اللہ کا فضل ہے, زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علماء نے دین کی حفاظت بھرپور کی. آپ سے جو چیزیں نہیں ہوئیں ان کی ذمہ داری قبول کیجئے, دوسروں کی بات نہ کیجئے, دوسروں پر الزامات لگانا یہ تو عورتوں کی عادت ہے. تو بہرحال حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ علماء کی ذمہ داری دین کی حفاظت تھی, وہ اللہ کے فضل سے وہ کر رہے ہیں, آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. اور جی آسان ٹارگیٹ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں چاند پہ جانے نہیں دے رہے, اللہ کرے کہ آپ چاند سے آگے جائیں, لیکن جاؤ تو صحیح, کچھ کرو تو صحیح, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ, ثم لا یتبعون, پھر خرچ کرنے کے بعد, ما انفقوا منا ولا اذى, نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں. علماء کہتے ہیں جیسے آگ جلا دیتی ہے لکڑی کو, کاغذ کو, اس طرح جو احسان جتلانا ہے اور اذیت دینا ہے یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے. اس لیے ہرگز ان چیزوں سے دور رہیے گا. لہم اجرہم, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, عند ربہم, اللہ کے ہاں, ولا خوف علیہم, اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین. قول معروف, ایک نیک بات کرنا, یہ ہے ہماری دین کی تعلیمات. ایسے نہیں ہے کوئی بات نہیں, مال نہیں ہے کوئی بات نہیں, زبان تو ہے نا. نیک بات کیجئے, اچھی بات کیجئے, لوگوں کے ساتھ اچھی بھلائی کے ساتھ برتاؤ کیجئے, اور وہ مغفرہ, درگزر, लोगों से गुनाह होते हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, हो सकता है कोई गलती हो जाए, आप फिरौन बन के उस पर चढ़ दौड़ें, आप उसको सजा दें, आप उस पर जुर्म करें, आप उस पर जुल्म करें, गलत। कौल मारूफ नेक बात करो, व मग़फ़िरत और दरगुजर करो, खैरुन ये बहुत बेहतर है, मिन सदक़ति यतबउहा अज़ा ऐसे सदक़े से जिसके बाद ज़िल्लत होती है। क़ुरान करीम कितने ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कर रहे हैं, फरमाया अगर पैसे देने हैं उसके बाद एहसान जतलाना है ज़रूरत नहीं, पैसे देने हैं और उसके बाद जलील करना है फरमाया ज़रूरत नहीं, नेक बात करना ज़रूरी है और दरगुजर करना ज़रूरी है। कायदा मालूम हो गया कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से ज़्यादा ज़रूरी अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना और लोगों को तकलीफ़ न देना और दरगुजर करना, अखलाक को अपने कंट्रोल में रखना ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खैर मिन सदका, ये उस सदक़े से बहुत बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ें होती हैं, जिसके बाद आप लोगों को अज़ियत देते हैं। वल्लाहु गनीयुन हलीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला गनी है, अल्लाह को तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये आप पर अल्लाह एहसान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं, आप पर अल्लाह ने एहसान किया है कि आप इस माल के मालिक हुए हैं, आप पर अल्लाह ने एहसान किया है कि आपको इतनी समझ दी है कि आपका दाना भी ठीक है, आपकी ज़मीन भी ठीक है और आपका जो किसान है वो भी ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ठीक ना हो तो ये जो सारी दौलत है आखिरत में किसी किस्म का फ़ायदा जाने वाली नहीं है। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह वहदहु ला शरीक गनी है, अल्लाह ताला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारी ट्रेनिंग है और अल्लाह वहदहु ला शरीक हलीम है, अल्लाह ताला बुरदबार है, सबको एक साथ नहीं देते, सबसे एक साथ नहीं लेते, सब पर पत्थर नहीं बरसाते, बल्कि जिस जिस को जिस किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होती है, तंबीह की ज़रूरत होती है, उस तरीक़े से अल्लाह ताला देते हैं। اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ولهم خيارنا ولا تولهم مهلنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مرضك غضبك। कुछ लोग बीमार हैं, दुआओं का कहा है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बीमारों को सेहत और आफियत दें, और जो परेशानी में हैं या किसी भी मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला